नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 58 सीटों पर मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक 39% से अधिक मतदान। ओडिशा में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। लोकसभा चुनावों के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार चरम पर। चक्रवात रेमेल के कल आधी रात तक बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराने की आशंका। पापुआ न्यूगिनी में विनाशकारी भूस्खलन में 300 से अधिक लोगों की मौत। दक्षिण कोरिया में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में महिला कंपाउंड टीम ने स्वर्ण और मिक्स्ड टीम ने रजत पदक जीता। दोपहर समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में आज 6 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों के 58 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं। बिहार की 8, हरियाणा की सभी 10, दिल्ली की सभी 7, झारखंड की 4, ओडिशा की 6, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान हो रहा है। ओडिशा विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 42 निर्वाचन क्षेत्रों में भी वोट डाले जा रहे हैं। आज ही हरियाणा की करनाल सीट और उत्तर प्रदेश की गैनसेडी सीट पर उपचुनाव के लिए भी मतदान हो रहा है। सवेरे 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। दोपहर 1 बजे तक 39% से अधिक मतदान की खबर है। पश्चिम बंगाल में लगभग 55%, झारखंड में लगभग 43%, उत्तर प्रदेश में 37% से अधिक और बिहार तथा हरियाणा में 36% से अधिक मतदान हुआ। जम्मू कश्मीर में 35% से अधिक, दिल्ली में 34% से अधिक और ओडिशा में लगभग 36% मतदान दर्ज किया गया है। ओडिशा विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में लगभग 36% मतदान की खबर है। लोकसभा चुनाव के इस चरण में कुल 889 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। राजधानी दिल्ली में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित कई प्रमुख व्यक्तियों ने मतदान किया। केंद्रीय मंत्री डॉ एस जयशंकर और हरदीप पुरी, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, दिल्ली की मंत्री आतिशी ने अपने अपने केंद्रों पर वोट डाले। इसके अलावा गृह सचिव अजय भल्ला, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की नेता वृंदा करात, भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी और कांग्रेस उम्मीदवार उदित राज ने भी मतदान किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि मतदान करना हमारी जिम्मेदारी और ताकत दोनों है। नई दिल्ली में मतदान के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत विश्व का सबसे जीवंत, सक्रिय और प्रभावी लोकतंत्र है।
इतनी संख्या में लोग मत करते हैं, मताधिकार दायित्व भी है, ताकत भी है। भारत विश्व का सबसे ज्वलंत, सक्रिय, प्रभावी लोकतंत्र है, दुनिया के लिए एक मिसाल है।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोगों से लोकतंत्र के इस सबसे बड़े उत्सव में मतदान करने की अपील की है। दिल्ली में मतदान करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि मतदान के दौरान गर्मी को देखते हुए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
6th फेज का चुनाव है और पूरी कंट्री में लोग बड़े उत्साह से इस चुनाव को भाग ले रहे हैं और हर बूथ पे हमारे अफसर्स ने बहुत तैयारी की। दिल्ली के बाहर भी बहुत तैयारी की, शामियाने भी लगाए हैं, सजाया भी है, सेल्फी पॉइंट्स बनाए हैं, ORS रखा है, वाटर रखा है। गर्मी है तो सब चीज का इंतजाम है। लोगों को बड़ी से बड़ी संख्या में आके मतदान में हिस्सा लेना चाहिए। दिस इज ए फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी इन विच एवरीबडी मस्ट पार्टिसिपेट।
और अब चलते हैं मतदान की गतिविधियों की जानकारी के लिए अपने संवाददाता के पास। आइए सबसे पहले उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। इस समय सुशील हमारे साथ हैं। सुशील, मतदान के इस चरण में उत्तर प्रदेश में किन प्रत्याशियों के बीच मुख्य मुकाबला है और अब जब लगभग आधा दिन बीत चुका है तो आप मतदान केंद्रों पर क्या उत्साह देख पा रहे हैं?
देखिए नवीन, मैं इस समय राष्ट्रीय शिशु विद्यालय मुंपोड़गंज के जो है पोलिंग बूथ है उस पर मौजूद हूँ। यहाँ जो मतदान केंद्र है वहाँ पर सुबह के आसपास हमने आज कई सारे शहर के, प्रयागराज के बहुत सारे मतदान केंद्रों का जायजा लिया। सुबह बहुत भीड़ थी, लोग जल्दी से जल्दी गर्मी होने से पहले वोट डालना चाहते थे, लेकिन अभी दोपहर में मतदान की प्रक्रिया थोड़ी धीमी है। काफी तेज धूप है, उमस है, तो लोग थोड़ा कम संख्या में नजर आ रहे हैं पोलिंग केंद्रों पर, मतदान केंद्रों पर। अगर समीकरण की बात करें तो 14 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, महत्वपूर्ण सीट प्रयागराज की भी है और फूलपुर, जहां से पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी चुनाव जीत चुके हैं। ये दोनों इनके जो क्षेत्र हैं वो प्रयागराज जिले से जुड़े हुए हैं। इन दोनों पर कड़ी लड़ाई है, प्रवीण पटेल और अमरनाथ मौर्य, ये दोनों प्रत्याशी हैं। प्रवीण पटेल भाजपा से हैं और अमरनाथ मौर्य गठबंधन से हैं, इनसे फूलपुर पर, और नीरज त्रिपाठी जो कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कद्दावर बीजेपी नेता केशनाथ त्रिपाठी के बेटे हैं उनके बीच में, और उज्ज्वल रमन सिंह जो सांसद कई बार रह चुके हैं रेवती रमन सिंह समाजवादी पार्टी से, उनके बेटे हैं। इसके अलावा सुल्तानपुर में मेनका गांधी जो वर्तमान में सांसद हैं और पूर्व में वो मंत्री भी रह चुकी हैं, उनकी प्रतिष्ठाताओं पर है। अंबेडकर नगर में रितेश पांडे जो बसपा से सांसद थे वो इस बार भाजपा के टिकट पर लड़ रहे हैं। और एक दिलचस्प मुकाबला आजमगढ़ में है जहां पर दिलेश लाल यादव निरहुआ जो भोजपुरी स्टार है वर्तमान में सांसद है भाजपा से, उनके और अखिलेश यादव के भाई जो है धर्मेंद्र यादव उनके बीच में मुकाबला है। तो ये सीटें बड़ी महत्वपूर्ण हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, बहुजन समाज पार्टी के लिए भी, क्योंकि 10-14 में से 4 सीटें बहुजन समाज पार्टी के पास है और बाकी 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास में है। नवीन
सुशील, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब उत्तर पूर्वी दिल्ली का रुख करते हैं जहां हमारे संवाददाता आनंद इस समय मौजूद हैं। आनंद, दिल्ली में इस समय तापमान अपने चरम पर है, ऐसे में चुनाव आयोग ने मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए क्या तैयारियां की हैं, और इस समय आप जिस मतदान केंद्र पर हैं वहां क्या स्थिति है?
नवीन, मैं श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि आज दिल्ली के सभी 7 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और मैं इस वक्त उत्तर पूर्वी संसदीय क्षेत्र के लातूर विधानसभा क्षेत्र में सर्वोदय कन्या विद्यालय में बनाए गए मतदान केंद्र पर हूँ, जहां मतदान सुचारू और शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। फिलहाल मतदान शुरू हुए 7 घंटे से अधिक का समय हो गया है और दोपहर 1 बजे तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुल 37.31% वोटिंग दर्ज की गई है। पिछले लोकसभा चुनाव में इस सीट पर कुल 63.86% मतदान हुआ था और इस समय धूप तेज है, लेकिन इसके बावजूद लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। इसमें महिलाओं, दिव्यांग और बुजुर्गों के अलावा कई ऐसे भी मतदाता हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। गर्मी के को की स्थिति को कम करने के लिए और मतदाताओं की सुविधा के लिए चुनाव आयोग ने मतदान स्थलों पर शेड, पेयजल, कूलर, पंखा, व्हीलचेयर और स्वयंसेवियों की भी व्यवस्था की है।
धन्यवाद आनंद।
प्रत्याशियों की बात की जाए,
आनंद आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आइए अब हरियाणा का रुख करते हैं। अनुपम, हरियाणा में भी मौसम की स्थिति कमोबेश दिल्ली की तरह है और गर्मी की तपिश बहुत तेज है, ऐसे में हरियाणा के मतदाता किस जोश के साथ मतदान कर रहे हैं और चुनावी प्रबंध कैसे हैं?
जी नवीन, हम अभी हरियाणा के फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के सेक्टर 28 स्थित डायनेस्टी स्कूल मतदान केंद्र पर हैं। यहाँ तापमान करीबन 42 डिग्री सेल्सियस है। तेज गर्मी के बावजूद लोगों में मतदान को लेकर काफी उत्साह है। युवा मतदाता, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन बड़ी संख्या में मतदान करने लगातार बूथ पे आ रहे हैं। हरियाणा में अब तक 36.48% मतदान 1 बजे तक हो चुका है और फरीदाबाद में 1 बजे तक 33.92% हो चुका है। अगर नवीन हम बात करें फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों की, तो यहाँ से केंद्रीय मंत्री किशन पाल गुज्जर तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से है पूर्व विधायक महेंद्र प्रताप सिंह और जननायक जनता पार्टी की तरफ से नलिन हुड़ा।
धन्यवाद अनुपम। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के कल्याण में हमारे संवाददाता इस समय मौजूद हैं। कल्याण, पश्चिम बंगाल में आज जिन सीटों के लिए मतदान हो रहा है वहां किन मुख्य प्रत्याशियों का भाग्य आज ईवीएम में बंद हो जाएगा और चुनाव आयोग ने सुचारू मतदान के लिए क्या प्रबंध किए हैं? कल्याण,
देखिए अभी तक तो 54.80% वोट रजिस्टर हुआ है। अभी तमलुक में बीजेपी कैंडिडेट अभिजीत गंगोपाध्याय, देवांशु भट्टाचार्य।
धन्यवाद कल्याण, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चुनाव लोकतंत्र में एक बड़ा उत्सव है और भावी पीढ़ियों के मन में लोकतंत्र के मूल्यों को स्थापित करने का एक अवसर है। दूरदर्शन समाचार को दिए एक साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि सरकार या राजनीतिक दलों को अपने काम का हिसाब जनता को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो चुनाव को लोगों से मिलने का एक प्रकार का अभियान मानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी भी तरह की आलोचना को बहुत गंभीरता से लेते हैं।
लोकतंत्र में चुनाव एक बहुत बड़ा उत्सव होता है। सबसे बड़ी विशेषता है कि जिसमें मतदाताओं को एजुकेट करने का एक मास स्केल पर मूवमेंट शुरू हो जाता है। दूसरा, जो सरकार है या राजनीतिक दल है वो जनता को अकाउंटेबल होनी चाहिए, उन्होंने अपने काम का हिसाब देना चाहिए और चुनाव में उन्होंने जिस भी फॉर्म में जाए ये उनका काम है।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार चरम पर है। राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। इस चरण में 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होगा। मतगणना 4 जून को होगी। बिहार में लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का प्रचार जोरों पर है। इस चरण में 8 लोकसभा क्षेत्र पाटलिपुत्र, पटना साहिब, बक्सर, नालंदा, काराकाट, आरा, सासाराम और जहानाबाद में 1 जून को मतदान होगा। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने INDI गठबंधन के दलों पर अवसरवादी और परिवारवादी दल का गठबंधन होने का आरोप लगाया है। आज बिहार में पाटलिपुत्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, राष्ट्रीय जनता दल और NCP जैसे परिवारवादी दल प्रधानमंत्री के पद को म्यूजिकल चेयर बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने काराकाट में भी जनसभा को संबोधित किया। उनका बक्सर निर्वाचन क्षेत्रों में भी चुनावी रैली करने का कार्यक्रम है। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरा निर्वाचन क्षेत्र के अगियांव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरा और नालंदा निर्वाचन क्षेत्र में भी रैलियां और अस्थावा में जनसभा को संबोधित किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
पर्वों और उत्सवों का देश है भारत। अब समय है देश के सबसे बड़े पर्व और उत्सव का। आने वाले लोकसभा चुनाव के पर्व को मनाएं उमंग और उत्साह से। वोटर लिस्ट में अपना नाम जांचने के लिए प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर में जाएं और वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें या फिर elections24.eci.gov.in पर जाएं। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर वोट कीमती है, इसलिए वोट डालना न भूलें। चुनाव का पर्व देश का गर्व।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की पूर्व मध्य खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के क्षेत्र के आज शाम तक चक्रवाती तूफान के रूप में बदलने की आशंका है। विभाग के अनुसार चक्रवात रिमेल के बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र को कल आधी रात तक पार करने और भीषण चक्रवाती तूफान का रूप लेने की संभावना है। इसे देखते हुए पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा हो सकती है। उत्तरी ओडिशा में भी कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ क्षेत्रों में भी मूसलाधार बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। पापुआ न्यू गिनी के उत्तरी क्षेत्र में विनाशकारी भूस्खलन में 300 से अधिक लोगों के मारे जाने की आशंका है। कल राजधानी पोर्ट मॉरिसबी से लगभग 600 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में एंगा प्रांत के काओकलाम गांव में हुए भूस्खलन में 1100 से अधिक घर दब गए। दक्षिण कोरिया में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। ज्योति सुरेखा वेन्नाम, परिणीत कौर और अदिति स्वामी ने फाइनल में तुर्की को हराया। वहीं मिक्स्ड टीम को अमेरिका से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल गुरूद्वारा हेमकुंड साहिब के कपाट आज सुबह पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 6वें चरण में 58 सीटों पर मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक 39% से अधिक मतदान हुआ। ओडिशा में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। लोकसभा चुनावों के सातवें और अंतिम चरण के लिए प्रचार चरम पर। चक्रवात रेमिल के कल आधी रात तक बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराने की आशंका। पापुआ न्यू गिनी में विनाशकारी भूस्खलन में 300 से अधिक लोगों की मौत। और दक्षिण कोरिया में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में महिला कंपाउंड टीम ने स्वर्ण और मिक्स्ड टीम ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।